नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर गहराई से बात करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग दो।
जी हाँ, और ये पुस्तक ये 1988 से 1990 के बीच लिखी गई थी। ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक हिस्सा है।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने तो जैसा आपने कहा इस पूरे साहित्य को अपना ज्ञान शरीर ही माना था।
बिल्कुल, उन्होंने आग्रह भी किया था कि इसे जन जन तक पहुंचाया जाए।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी के आने से दशकों पहले पूज्य गुरुदेव क्या देख रहे थे, मतलब उस समय की चुनौतियां और साथ ही एक उज्जवल भविष्य की आशा भी।
सही कहा। इस पुस्तक का जो केंद्रीय विचार है वो युग संधि काल में होने वाली एक महाक्रांति के इर्द गिर्द घूमता है।
महाक्रांति, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। पूज्य गुरुदेव ने इसे कैसे समझाया है?
उन्होंने देखिए इतिहास और पुराणों से उदाहरण दिए हैं, जैसे रावण का पतन और फिर राम राज्य की स्थापना, या महाभारत युद्ध के बाद धर्म की पुनः स्थापना।
अच्छा,
और बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन भी शायद।
हाँ बिल्कुल,
बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन भी। ये सब वो उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि कैसे समय समय पर महाकाल के संकल्प से बड़े और कई बार अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं।
तो ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि परिवर्तन के पैटर्न है एक तरह से।
जी, और दिलचस्प बात यह है कि पूज्य गुरुदेव उस दौर की जो बड़ी समस्याएं थीं, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, मूल्यों का गिरना, भौतिकवाद की दौड़,
हाँ, आणविक खतरा, वनों का कटना, नशे की लत,
एड्स जैसी बीमारियां, दहेज, इन सबका मूल कारण वो एक ही चीज में देखते थे।
वो क्या?
मानवीय दुर्बुद्धि, मतलब मनुष्य की अपनी सोच, अपने कर्मों का बिगड़ जाना।
मानवीय दुर्बुद्धि यानी समस्याएं बाहर से ज्यादा अंदर से पैदा हो रही हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही जैसा एल्विन टॉफलर ने भी इशारा किया था अपनी पुस्तक फ्यूचर शॉक में, कि ये आपत्तियां काफी हद तक हमारी खुद की बनाई हुई हैं।
ये तो काफी गंभीर बात है। अगर जड़ मानवीय दुर्बुद्धि है तो क्या पूज्य गुरुदेव ने मतलब कोई उम्मीद भी जताई या सिर्फ निराशा ही?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो पूज्य गुरुदेव की दृष्टि की खासियत है। इतनी चुनौतियों के बावजूद उनका और नॉस्ट्रेडेमस, कीरो, जीन डिक्सन, श्री अरविंद जैसे और भी कई भविष्य दृष्टाओं का,
हाँ हाँ,
उनका पक्का विश्वास था कि आखिर में जीत सद्बुद्धि की ही होगी।
अच्छा, मतलब अंत भला तो सब भला,
कुछ ऐसा ही उनका मानना था कि कठिनाइयों के बाद पृथ्वी पर एक नई बेहतर सतयुगी व्यवस्था जरूर आएगी।
और इसके लिए कोई खास समय बताया था उन्होंने?
हाँ, उन्होंने 20वीं सदी के आखिरी और 21वीं सदी के शुरुआती सालों को, मतलब मोटे तौर पर 1989 से 2000 तक के जो लगभग 12 साल थे, उन्हें संधि बेला कहा।
संधि बेला यानी बदलाव के लिए महत्वपूर्ण समय।
जी, इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए निर्णायक समय माना था।
तो एक तरफ मानवीय दुर्बुद्धि और दूसरी तरफ सद्बुद्धि की विजय का विश्वास, पर यह बदलाव लाएगी कौन सी शक्ति? क्या इसके पीछे कोई खास मैकेनिज्म होगा?
हाँ, यहीं पर वो एक बहुत ही मौलिक अवधारणा लाते हैं। पूज्य गुरुदेव एक चौथी शक्ति के उदय की बात करते हैं।
चौथी शक्ति? तीन तो हम जानते हैं, बुद्धि, सत्ता, धन।
बिल्कुल, ये उन तीनों से अलग है। इसे वो कहते हैं प्रखर प्रतिभा।
प्रखर प्रतिभा, ये क्या है? इंटेलेक्ट से अलग?
ये सिर्फ दिमागी तेजी नहीं है, ये असल में आदर्शवादी उत्कृष्टता है, गहरी मानवीय संवेदना, निस्वार्थ सेवा, समर्पण, इन सब का मिला जुला रूप।
अच्छा,
ये उन लोगों में दिखती है जिन्हें हम संत कह सकते हैं या देव मानव, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हैं, काम करते हैं।
तुम नए युग का निर्माण यही प्रखर प्रतिभा वाले लोग करेंगे?
जी हाँ, पूज्य गुरुदेव का यही दृढ़ विश्वास था। ये एक तरह का नैतिक और आध्यात्मिक चुंबकत्व है।
ये तो बहुत गहरी बात है कि बदलाव का आधार बाहरी नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर है, पर आम इंसान इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? कोई रास्ता बताया पूज्य गुरुदेव ने?
बिल्कुल बताया। इसी प्रखर प्रतिभा को जगाने और नए युग की नींव डालने के लिए उन्होंने चार चरण वाला युग धर्म बताया।
चार चरण वाला युग धर्म, वो क्या है?
पहला है समझदारी, मतलब अपने हर काम के दूरगामी असर को सोचना।
दूसरा
ईमानदारी, सिर्फ पैसों में नहीं, सोच और व्यवहार में भी, दूसरों से वैसा ही बर्ताव करना जैसा हम अपने लिए चाहते हैं।
हम तीसरा
जिम्मेदारी, अपने प्रति, परिवार, समाज, पूरी सृष्टि के प्रति अपने फर्ज को पहचानना और निभाना। और चौथा बहादुरी।
बहादुरी,
मतलब शारीरिक बल?
नहीं, यहाँ मतलब है नैतिक साहस, अच्छाई को बढ़ाने और बुराई को हटाने के लिए हिम्मत दिखाना, कोशिश करना।
हाँ।
जिसे पुरुषार्थ कहा गया है।
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये चार स्तंभ सुनने में सरल है पर पालन करना शायद।
हाँ, चुनौती तो है, पर पूज्य गुरुदेव मानते थे कि यही नए युग का आधार बनेंगे। क्या इस बदलाव में किसी और शक्ति की भी भूमिका बताई गई है?
हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूज्य गुरुदेव सूर्य को सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं मानते थे।
अच्छा।
वो उसे सविता देवता के रूप में एक चेतन आध्यात्मिक शक्ति मानते थे।
उनका विश्वास था कि 21वीं सदी में ये सविता शक्ति मनुष्य की चेतना को परिष्कृत करने में, जगाने में खास भूमिका निभाएगी।
इसी को शायद प्रखर प्रतिभा संवर्धन कहा है।
बिल्कुल सही, यानी सूर्य की आध्यात्मिक ऊर्जा लोगों के मन बुद्धि को ज्यादा संवेदनशील, आदर्शवादी बनाने में मदद करेगी, जिससे प्रखर प्रतिभा और उभरेगी।
तो पूरी पुस्तक एक तरह से महाकाल की संकल्पित संभावनाओं पर विश्वास जताती है।
जी हाँ, मतलब समय की वो अदृश्य शक्ति जो सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है। बाहरी उथल पुथल भले ही दिखे, पर नवयुग का आना निश्चित है, ऐसा उनका दृढ़ मत था।
तो अगर हम सार देखें तो पूज्य गुरुदेव ने दशकों पहले चुनौतियों को पहचाना,
उनकी जड़ मानवीय दुर्बुद्धि में देखी,
हाँ,
आधारित एक उज्जवल भविष्य का विश्वास भी दिलाया, एक अवश्यंभावी उज्जवल भविष्य।
और ये बदलाव एक महाक्रांति की तरह होगा जो आखिर में सृजन और संतुलन लाएगा।
बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को बनता है।
हाँ, जरूर।
पूज्य गुरुदेव ने परिवर्तन की चाबी बाहरी व्यवस्थाओं या सिर्फ बौद्धिक विकास में नहीं, बल्कि गहरे व्यक्तिगत स्तर पर प्रखर प्रतिभा के जागरण में देखी।
जी।
तो क्या आज की जो हमारी जटिल वैश्विक चुनौतियां हैं, उनका असली और टिकाऊ समाधान हमारी बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा इसी आंतरिक आदर्शवादी, निस्वार्थ सेवा वाली प्रतिभा के विकास में छिपा है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने संकेत दिया था?
हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या असली कुंजी भीतर ही है? इस पर विचार करना वाकई सार्थक हो।